ओम शांति। आज का टॉपिक बहुत सुंदर है, एक बल एक भरोसा। जिंदगी में भरोसे की बहुत जरूरत होती है ना? बहुत संबंधी होते हैं, बहुत फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन भरोसेमंद लोग बहुत गिने चुने होते हैं। जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं वो बहुत ही कम लोग होते हैं। अगर एक बार भरोसा टूट गया, बिखर गया, तो फिर वो संबंध फिर से जुड़ नहीं सकता। संबंधों की नींव निश्चय, विश्वास, भरोसा, भरोसे की बात होती है। जहां भरोसा है वहां हमें बल भी मिलता है वहां से। इसीलिए हम संबंध क्यों निभाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ हमें बल जरूर मिलता है उन संबंधों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा। अलग अलग रीति से बल मिलता है। जब भी कुछ परेशानियां होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ के, तो मदद मिलती है। लेकिन अभी कलयुगी संसार में क्या है हालत? किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत सारे लोग होते हुए भी हमें उनसे सुख मिलेगा ये गारंटी नहीं है। कहीं ना कहीं हमें दुख ज्यादा मिल जाता है उन रिश्तों से, उन संबंधों से दुख ज्यादा मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होता है। ऐसे परिस्थिति में हमको भरोसा दिलाने वाला, आत्मा को बल देने वाला कौन हो सकता है? एक शिव बाबा ही हो सकता है, क्योंकि एक शिव बाबा ही है जो निस्वार्थ रूप से हर आत्मा को वो बहुत प्यार करते हैं, और जन्म जन्मांतर से जो हम अलग अलग संबंधों से दुख लेते आए हैं तो वो भी आत्मा के ऊपर जमा हुआ है, जिस कारण से ना केवल इस जन्म में हम दुख पा रहे हैं लेकिन पिछले जन्मों के भी जो हमारे दुख जो लिए हुए हैं वो भी संस्कार में कहीं ना कहीं है। तो न केवल इस जन्म के लिए हमारा आधार है बाबा, लेकिन पिछले जन्मों के भी जो भी हिसाब किताब है उसको भी चुकतू करने के लिए बाबा ही हमें मदद कर सकते हैं, है ना? तो ऐसे एक बल एक भरोसा एक बाबा में हम कैसे रख सकते हैं? रखने के लिए हमें कुछ पुरुषार्थ करने की जरूरत है। सबसे पहले हमें निश्चय की जरूरत होती है बाबा में। परिचय मिल गया बाबा कौन है, लेकिन निश्चय कितना है बाबा में वो बात होता है। कई बार हम थोड़ा बाबा से बल लेते हैं, जब योग करते हैं कोई परेशानियां आती हैं तो बाबा के कमरे में जाकर के बैठ करके बाबा 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 बहुत अखंड तपस्या करते हैं, बाबा इस परिस्थिति से पार कराओ, बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं, बाबा को याद करते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थिति निकल जाए, सुख के दिन बाबा को याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं, थोड़ा कम करते हैं, है ना? परिस्थितियों के समय ज्यादा याद करते हैं, लेकिन सुख के समय कम याद करते हैं। लेकिन ऐसे एक रस हमारा संबंध बाबा के साथ हो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कभी कभी लोगों से सहारा ले रहे हैं, लोगों को हम सहारा बना रहे हैं, कभी कभी हम बाबा को सहारा बना रहे हैं। बाबा ने रिसेंटली, मुझे लगता है कि 10 दिन पहले के जो संडे की मुरली है, लास्ट संडे की मुरली है, बाबा ने ये कहा था कि भले आत्माओं से सपोर्ट ले, सपोर्ट लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन फाउंडेशन बनाना नहीं चाहिए, है ना। तो वो फाउंडेशन, हमारे संबंध का फाउंडेशन, हमारे जीवन का फाउंडेशन कोई और नहीं है। भले थोड़ा बहुत मदद ले ली वो अलग बात है, लेकिन हमारे जीवन की जो नींव है वो हमेशा बाबा होनी चाहिए। और इसीलिए बाबा कभी कभी टेस्ट भी करते हैं, कितना निश्चय है बच्चे में वो टेस्ट भी करते हैं बाबा। यज्ञ में बहुत सारे ऐसे मिसाल है, जो यज्ञ में भाई बहने आए, दादियां आई, तो बहुत धनाढ्य घर के थे, बहुत सुखी संपन्न परिवार के थे, लेकिन बाबा जैसे मिल गए, मिलते ही सब कुछ त्याग किया। सब कुछ त्याग करके बाबा एक बल, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसे निश्चय रख करके अपना जीवन समर्पित किया। एक बार निर्मल शांता दादी, निर्मल शांता दादी को जानते हैं आप सभी, निर्मल शांता दादी ब्रह्मा बाबा के लौकिक बेटी, पांडव भवन का किस्सा है ये। तो पांडव मधुबन ने उन दिनों में माउंट आबू में बहुत कड़ाकदार ठंड पड़ता था, दादी को अस्थमा था, और उन दिनों में बेगरी पार्ट होने के कारण से कोई डॉक्टर्स को कंसल्ट नहीं करते थे, डॉक्टर्स को देने के लिए पैसा नहीं होता था, मेडिसिन खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था। तो इसीलिए अलमाइटी बाबा मतलब निराकार शिव बाबा को संदेश भेजा करते थे, जो संदेशिया है वो जाते थे वतन में बाबा से मेडिसिन क्या लेना है, घरेलू नुस्खे तो वो लेके आते थे और घरेलू नुस्खे करते थे, जो भी बीमारियां होती थी तो वो ठीक हो जाते थे। यही प्रक्रिया थी, यही रिवाज था उन दिनों में यज्ञ में। और निर्मल शांता दादी को बहुत अस्थमा था, और कुछ भी करे, कुछ भी मेडिसिन दे, कुछ भी करे तो वो जा नहीं रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था। तो ब्रह्म बाबा ने सोचा कि चलो एक बार और अलमाइटी बाबा से पूछ लेते हैं क्या करे, बच्ची का जो अस्थमा है वो बढ़ता जा रहा है तो क्या करें। तो एक संदेशी गई वतन में और संदेश लेके आई, और उसने कहा कि अलमाइटी बाबा कह रहे हैं इस बच्ची को आइस कोल्ड वाटर से, आइस कोल्ड पानी से नहलवाना है। अभी अस्थमा का पेशेंट आइस कोल्ड पानी से अगर कोई नहा ले, शरीर भी छोड़ सकते हैं, इतना खतरनाक है ना, वो ठंड सहन नहीं कर सकते हैं। तो अभी बाबा चिंतित हो गए, ब्रह्मा बाबा चिंतित हो गए, अभी करे क्या, अलमाइटी बाबा ने ये संदेश दिया है लेकिन ये करे ना करे, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन में थे। फिर से संदेशी को भेजा, फिर से जाओ, फिर से पूछो बाबा को, शायद कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गलती हुई है, फिर से पूछो। तो दोबारा भेजा, दोबारा भी वही संदेश आया कि नहीं, वही करना है, आइस कोल्ड वाटर पानी से नहलवाना है, सिर से नहलवाना है। तो अभी करे क्या, ठीक है। ब्रह्मा बाबा बहुत चिंतित हो गए और कहा कि निर्मल शांता बच्ची को बता दो ये बात। तो निर्मल शांता दादी को जब बताया, दादी में के अंदर एक बल, एक भरोसा, कितना निश्चय था दादी के अंदर। अगर वही बात हमारे सामने आती तो क्या करते हम, अगर बाबा बोलते कि आइस कोल्ड पानी से नहाना है तो हम क्या करते हा? तो प्रश्न उठता है मन में कि ये बाबा का ही संदेश है या फिर संदेश ही कुछ अपना गुस्सा निकाल रही है बीच में, या कुछ अपना मनमत चला रही है, या वहां निश्चय थोड़ा सा प्रश्नचित चिन्ह उठता है। लेकिन निर्मल शांता दादी के अंदर इतना निश्चय था, उन्होंने बोला कि बाबा अगर बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ जाकर के बाथरूम में। तो उस समय तो वहां फ्रिज नहीं होता था पांडव भवन में, मार्केट से वो गोला इतना बड़ा मंगाया, उसको पिघाला, फिर पानी बनाया उसका, फिर वो बाल्टी में भर करके दादी जाकर के बाथरूम में बैठ गए और फिर संदेशी को कहा जाओ बाल्टी लेकर के पानी डालो, मग लेकर के पानी सिर से डालो। जो जैसे ही वो संदेशी पहुंची बाथरूम में और मग निकाल करके ऊपर डालने लगी तो बाबा ने फिर से खींचा उसको, संदेश में वहां फिर से वतन में चली गई। और बाबा ने कहा कि निर्मल शांता बच्ची टेस्ट में पास हो गई। तो ऐसे ऐसे परीक्षाएं लेते थे बाबा, राजाई ऐसे नहीं देते ना बाबा। बाबा कहते हैं स्वर्ग की राजाई लेना मासी का घर नहीं है। ऐसे ऐसे टेस्ट जरूर लेंगे बाबा। दादियों का तो इस रूप से लिया, हर एक को कुछ न कुछ ऐसे परीक्षाएं हमारे सामने जरूर आएंगे टेस्ट करने के लिए कि कितना निश्चय है बाबा में हमारे अंदर। तो इसीलिए एक बल एक भरोसा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे भी परिस्थितियां आती हैं जहां कोई इंसान कोई आत्माएं भले कितना भी बलवान शक्तिशाली बुद्धिमान हो लेकिन वो लोग हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये एक बल बाबा के अंदर, एक भरोसा एक विश्वास अटूट बना रहे बाबा के अंदर, बाबा में हमारा, तो उसके लिए सात बातें आज हमारे जीवन में अंडरलाइन करेंगे, पक्का करेंगे, ताकि फिर हमारा निश्चय बाबा में अटूट रहे, भरोसा अटूट रहे। सबसे पहली बात जो बहुत जरूरी है वो है, बहुत सारे साकार मुरलियों में बाबा ने ये कहा है, श्रीमद् संपूर्ण रीति से फॉलो करना। लास्ट वीक भी बाबा ने साकार मुरली में ये बात कही थी कि क्या श्रीमद् हम पूर्ण रीति से फॉलो करते हैं। अगर भरोसा है बाबा में तो क्या हम श्रीमद् हर कदम पर हम श्रीमद् को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं जो अच्छी बातें हैं वो मैंने फॉलो कर दी, जो मुझे मुश्किल लग रहा है वो मैं बातें छोड़ दी, ऐसे बात नहीं होना चाहिए ना। जब निश्चय है, जब पता है शिव बाबा आलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिमान है, तो फिर हम कुछ श्रीमद् फॉलो करें कुछ श्रीमद् छोड़ दे, संपूर्ण रीति से फिर फॉलो नहीं हो पाता है। इसलिए शास्त्रों में भी बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जहां श्रीमद् फॉलो नहीं किया तो बहुत परेशानियां बहुत परेशानियां सामना करना पड़ा। सीता मैया को वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया तो फिर क्या अनुभव नहीं करना पड़ा उनको, है ना। तो श्रीमद् का लाइन, हम श्रीमद् के लाइन के अंदर रहेंगे तो बाबा हमारे प्रोटेक्शन करेंगे, हमारी रक्षा करते हैं। कहीं ना कहीं श्रीमद् का उल्लंघन किया और कहा बाबा मदद करो, बाबा के श्रीमद् के अनुसार हम चल ही नहीं रहे हैं और ये जताएंगे बाबा आप ही तो हैं मेरे और कौन है याद दिला रहे हैं बाबा को, संबंध याद दिला रहे हैं, और ये जैसे अथॉरिटी जता रहे हैं, अधिकार जता रहे हैं कि बाबा आप एक ही तो हैं। लेकिन एक है तो ठीक है, लेकिन हम कितना श्रीमत फॉलो कर रहे हैं बाबा के, वो बहुत बड़ी बात है ना। श्रीमत के अंदर रहेंगे तो हम सुरक्षित हैं। कहीं बार बाबा के बच्चे अलबेले हो जाते हैं, जो जैसे करना चाहिए ऐसे करते नहीं है, फिर कहेंगे बाबा बैठा हुआ है ना, बाबा बैठा हुआ है ना, बाबा मदद कर लेगा। अरे जो नियम मर्यादाएं हैं उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं और उल्टा कहे कि बाबा बैठा हुआ है ना, मेरी रक्षा करेंगे। ट्रैफिक में जब जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक रूल्स हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं और ये कहे बाबा बैठा हुआ है ना, बाबा को बिठाया है बाजू में, लेकिन ट्रैफिक रूल्स मैं फॉलो ही नहीं कर रही हूं, तो ये कहे कि बाबा मेरी रक्षा करेगा? नहीं हो सकता। कोविड के समय भी बहुत सारे ऐसे किस्से देखे, बहुत सारे भाई बहने बहुत केयरलेस रहे, मास्क नहीं पहनते थे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते थे, तो थोड़ा बहुत बुखार आया तो वो इतना ध्यान नहीं रखा और उन्होंने सोचा कि बाबा मेरा है ना, बाबा रक्षा कर लेगा, बाबा रक्षा कर लेगा, लेकिन बहुत सारे भाई बहनों ने शरीर छोड़ा है ना। फिर जाते जाते वो उन्होंने वही कहा कि आप मैंने जो गलती की आप ऐसे नहीं करना है ना। बाबा रक्षा करेगा लेकिन नियम मर्यादाओं को हमें फॉलो करने की जरूरत है। कई साल पहले की बात है, जब मैं पांडव भवन में रहती थी, 90s की बात है, 94-95 की बात है, मधुबन निवासी एक भाई वहां टू व्हीलर में जा रहा था तो अचानक एक ट्रक आया सामने से और एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट होकर के 3 दिन में उस आत्मा ने शरीर छोड़ा। बहुत ही यंग, 30s में था वो भाई, 38-39 उम्र होगा, तो वो उसने शरीर छोड़ा। और बहुत मधुबन निवासियों को बहुत शौक लग गया कि ऐसे कैसे, उन दिनों में कोई भी ब्राह्मण भाई बहने कोई एक्सीडेंट से मरते नहीं थे, तो उन दिनों में ये विश्वास था बाबा के बच्चे कभी एक्सीडेंट से शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो लेकिन ये पहला किस्सा था कि मधुबन निवासी करीब 10-12 साल से मधुबन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे, तो बहुत ही अच्छा भाई, तो ऐसे एक्सीडेंट से मर गया वो भाई। तो जब बाबा आए ओम शांति भवन में, उन दिनों में बाबा का सीजन चल रहा था, ओम शांति भवन में बाबा आए और मुरली चलाए, मुरली चलाने के बाद फिर निर्भय भाई जब बाबा से मिलने गए और निर्भय भाई ने कहा कि बाबा सभी मधुबन निवासियों के मन में एक प्रश्न है कि ये जो भाई शरीर छोड़ा वो क्यों ऐसा हुआ, बहुत प्रश्न है। तो बाबा ने मुस्कुराया और कहा कि उस आत्मा का उस ड्राइवर के साथ और उस जगह के साथ हिसाब किताब था, तो इसीलिए ये हुआ। उस व्यक्ति का क्या उस व्यक्ति की क्या गलती थी, वो आगे जा रहा था और अचानक एक्चुअली ज्ञान सरोवर आ रहा था उस टाइम पे, आगे गया तो लेफ्ट लेना था और लेफ्ट नहीं लिया करके वो मुड़ करके देखा, बाइक चला रहा है, मुड़ के देखा और अचानक ट्रक आ गया सामने से, वो एक्सीडेंट हो गया। तो मतलब उसकी भी गलती थी, तो पूरी तरह वो नियमों को फॉलो नहीं किया तो एक्सीडेंट हो गया है ना। तो पूरी तरह अगर हम नियमों को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर हम क्या कहेंगे, ड्रामा, ड्रामा में ऐसा था तो ऐसा हो गया, हिसाब किताब था ऐसा, मतलब कुछ ना कुछ बहाने बना लेंगे या कुछ ना कुछ कारण बता देंगे तो ऐसा हुआ, लेकिन कारण क्या था कि नियम को फॉलो नहीं किया। तो ऐसे ही वो जो हुआ वो स्थूल नियम था, लेकिन यहां बाबा के घर में ब्राह्मण होने के नाते हमारी जो मर्यादाएं हैं, हमारे जो श्रीमत हैं, वो हमारे लिए एक प्रकार से सुरक्षा कवच है। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में ये कहा है, कि अगर बच्चे श्रीमत का उल्लंघन करके किसी को सुख देंगे, वो सुख में नहीं गिना जाएगा, वो दुख में गिना जाएगा, है ना। तो इसलिए श्रीमत का लाइन क्रॉस करके किसको सुख देंगे, सीता भी, सीता भैया भी सुख देने के लिए उसने क्रॉस किया था। एक ब्राह्मण घर में आए और उसको भिक्षा ना दे, वो पाप माना जाता था। तो भिक्षा देने के कारण से उसने मर्यादा का उल्लंघन किया था। ऐसे ही कहीं ब्राह्मण, कहीं बार हम किसी को सुख देने के नाते सोचते कि ये अगर नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, थोड़ा रूठ जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा अभी थोड़ा क्रॉस कर लिया तो कोई थोड़ा ही तो है ना, चलेगा। तो ऐसे क्रॉस करके करेंगे तो जरूर हमें वो फिर एक शक्ति बाबा से मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, वो नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति। हमारा संसार संबंध है, है ना। जिन लोगों के साथ हमारा संबंध है वही हमारा संसार है। तो इस बाबा अभी कहते हैं ब्राह्मण बनने के बाद बाबा को संसार बनाना। बाबा को संसार बनाना माना सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़ना। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत सारे मिसाल है, अलग अलग भक्त अलग अलग संबंध भगवान के साथ जोड़ा, तो उस रूप से मदद उन्होंने अनुभव किया। भक्त प्रहलाद ने विष्णु के साथ पिता का संबंध जोड़ा तो समय पर उसने उस रीति से मदद पाया। भक्त मीरा ने गिरिधर गोपाल के साथ प्रियतम का संबंध जोड़ा तो उस रीति से उन्होंने अनुभव किया। एक विष का प्याला भी अमृत बन गया, है ना। द्रौपदी ने श्री कृष्ण के साथ भाई का संबंध जोड़ा तो समय पर उसने उस रीति का मदद अनुभव किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ सखा का संबंध जोड़ा तो समय पर उस रीति से अनुभव किया। लेकिन बाबा यहां कहते हैं सर्व संबंधों की अनुभूति करो। एक संबंध क्यों, सर्व संबंधों को अनुभव करने की जरूरत है। तो सर्व संबंध एक बाबा के साथ जब जोड़ते हैं तो हमारी भावनाएं बाबा के साथ जुड़ते हैं। केवल हम विचारों के आधार से, संकल्प के आधार से बाबा के साथ जुड़ते हैं, भावनाएं जुड़ते नहीं हैं, तो वो बहुत ही सूखापन रुकापन रहता है। लेकिन भावनाएं जब जुड़ जाते हैं बाबा के साथ, हमारी भावनाएं जुड़ती हैं। संबंध के साथ जब याद करते हैं तो भावनाएं जुड़ती हैं। जब भावनाएं जुड़ती हैं तो वहां ताकत भरती है। रास्ते चलते किसी के प्रति भी हमारी भावनाएं नहीं होती, लेकिन जहां संबंध है उनके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अजनबी व्यक्ति के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों हम सब कुछ करने के लिए तैयार है? जहां संबंध है क्योंकि वहां भावनाएं जुड़ी है। यहां भी इसलिए बाबा कहते हैं शिव बाबा को अपना बाप, टीचर, सदगुरु, सखा, बच्चा, प्रियतम, सब कुछ सर्व संबंधों से जब हम बाबा को याद करते हैं तो पूर्णतः हम बाबा को के साथ एक गहरा संबंध हम अनुभव कर सकते हैं। गहरा संबंध जब अनुभव करते हैं तो गहरी भावनाएं भी हम अनुभव करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं योग करते समय तीन चीजों की बहुत जरूरी होता है। एक है मन से बाबा को याद करना, बुद्धि से बाबा को याद करना और दिल का कनेक्शन भी जोड़ना। ये तीनों से बाबा को याद करने की जरूरत है। मन, बुद्धि और दिल, इसका मतलब क्या है? मन माना विचारों को क्रिएट करना, जैसे मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूं, तो मन से याद करना, बुद्धि से याद करना माना विजुलाइजेशन। हमारी जो विजुलाइजेशन बहुत ही क्लियर हो, कि जैसे अगर मैं कह रही हूं कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूं, क्या मैं उस बात को देख रही हूं, मैं अपने आप को देख पा रही हूं, एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु यहां बैठी हूं। और तीसरी बात, दिल का कनेक्शन माना दिल से बाबा को याद करना, माना प्यार से याद करना, संबंधों के आधार से याद करना, भावनाओं के साथ याद करना। इन तीनों को साथ साथ हम यूज करते हैं, वो शक्तिशाली याद बन जाता है। अगर तीनों में से एक भी कम हो जाता तो फिर वो अनुभव, योग की अनुभूति वो पूर्णतः नहीं हम अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा बार बार सर्व संबंधों की अनुभूति करने के लिए कहते हैं। और तीसरी बात, संपूर्ण समर्पण बुद्धि। संबंध तो जोड़ दिया, लेकिन क्या बुद्धि समर्पित है? बुद्धि समर्पित माना बाबा जो चाहे जैसे चाहे वैसे मैं चलूं। प्रकाशमणि दादी हमेशा कहते थे कि मैं तो एक कठपुतली हूं, बाबा सूत्रधार है, वो जैसा वो मेरे को नचाता है तो मैं वैसी नाचती हूं। कठपुतलियां क्या करती हैं? कठपुतलियों के हाथ पैर और सिर में वो सूत्र बंधा हुआ होता है, और वो पीछे, वो सूत्रधार होता है तो पीछे ऊपर वो खड़ा होकर के वो ऐसे जो सूत्र वो जो खींचता है वैसे हाथ पैर हिलता रहता है, सिर हिलता रहता है, जो सूत्र जो करता है तो वो वैसे हिलता है। ऐसे ही हमारा सूत्रधार कौन है? हमारा सूत्रधार है बाबा, लेकिन क्या हमने उस बात को एक्सेप्ट किया है? या फिर कभी कभी लगता है कि नहीं, मन जो मुझे ना ये बात, ये चीज करना बहुत पसंद है, भले बाबा नहीं कह रहे लेकिन फिर मुझे करना है, बाबा वो नहीं चाहते लेकिन मैं करना चाहती हूं, ये संपूर्ण समर्पित बुद्धि नहीं कहा जा सकता। संपूर्ण समर्पित बुद्धि माना कोई भी आधार नहीं, निराधार। क्या निराधार हो सकते हैं? कुछ भी हमने आधार पकड़ लिया, थोड़ा भी हमने आधार पकड़ लिया तो बाबा मदद नहीं करता, उन आधारों को भी छोड़ने की जरूरत है। द्रौपदी की कहानी आप सभी ने सुनी है, द्रौपदी के चीरहरण जब हो रहा था तो उसने सभी को आवाज दी, सभी को कहा, कि युधिष्ठर को कहा, भीष्म पितामह को कहा, सबको कहा आप मेरी मदद करो, लेकिन सभी ने एक एक करके आंख नीचे झुका दी। लेकिन लास्ट में उसने श्री कृष्ण को पुकारा, जब श्री कृष्ण को पुकारा तो वो साड़ियां तो आ गई मदद करने के लिए, लेकिन साड़ियां ऊपर ही वहां ऊपर हो रहे थे, क्यों वो नीचे तक वो साड़ियां क्यों नहीं आई, क्यों मदद नहीं मिली? क्योंकि उसने एक पल्लू हाथ में पकड़ करके रखा था, उसने पूरा छोड़ा नहीं था, अपनी रक्षा करने के लिए एक पल्लू हाथ में पकड़ करके रखा था, पकड़ करके फिर वो पुकार रही थी श्री कृष्ण को, तो इसीलिए वो मदद मिल नहीं रही थी। जैसे ही उसने वो उस पल्लू को छोड़ा, जो भी आधार है, थोड़ा भी आधार था, उसने भी उसका त्याग किया, तब मदद मिलना शुरू हुआ, है ना? ऐसे ही थोड़ा भी हम आधार पकड़ करके रखते हैं ना, ये आइवल के लिए चाहिए, कोई भी चीज को या कोई भी व्यक्ति को हम आधार बना करके रखते हैं तो बाबा क्या कहेंगे फिर? ये तो है ना तुम्हारा, वो मदद कर लेंगे, मैं क्यों मदद करूं? जब पूर्णतः सब कुछ त्याग करके निराधार बन करके बाबा को बोलेंगे बाबा मेरी मदद करें, तो जरूर बाबा मदद करते हैं। बाबा एक मुरली में, अव्यक्त मुरली में बहुत प्यार से बाबा ने कहा था कि जब भी मदद की जरूरत है तो क्या बोलना है, बाबा मेरे मीठे बाबा मेरा साथी आ जाओ, है ना। जैसे ही बाबा को इस रीति से पुकारते हैं तो बाबा जरूर आते हैं, आते हैं, आप सभी को अनुभव है, अनुभव है, बाबा आते हैं मदद करने के लिए। तो दोबारा उसको हम रिपीट करते हैं, क्या बोलना है बाबा को, बाबा मेरे मीठे बाबा मेरे साथी आ जाओ, जो एक साथ एक बोलेंगे सभी मिलकर के, मेरे बाबा प्यारे बाबा मेरे साथी आ जाओ। तो ये याद रखना, जब भी मदद की जरूरत होती है, जब भी कुछ परिस्थितियां आती हैं, तो ये याद करना बाबा को, एक संकल्प की दूरी पर है बाबा, केवल बाबा को हमने याद किया और वो हाजिर हो जाएंगे। लेकिन कई बार जब भी मदद चाहिए होता है, हम पहले कोई इंसान को याद करते हैं, कोई व्यक्ति को याद करते हैं, या कोई चीज को, हम ही सोचते रहेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, हम ही सोचते रहेंगे, तो बाबा की मदद नहीं मिलती है। तो निराधार बन करके, सब कुछ सहारा छोड़ करके बाबा को पुकारेंगे, बाबा को याद करते हैं, तो जरूर बाबा हमारी मदद करते हैं। और नेक्स्ट बात है कि अव्यभिचारी याद, एक बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा को ही हमेशा हम याद करें। बाबा कहते हैं अव्यभिचारी याद, एक बाबा को जब हम याद करते हैं तो बाबा जवाबदार हो जाता है हमारी रक्षा करने की, हमारी जवाबदारी उनके ऊपर है, बाबा पूरी तरह हमारी जवाबदारी बाबा ले लेते हैं। लेकिन थोड़ा भी उसको छोड़ करके किसी और को याद करते हैं तो बाबा हमारी मदद नहीं करता। भक्ति मार्ग में एक व्यक्ति थी, वो बहुत ही मशहूर है साउथ इंडिया में, कर्नाटक में बहुत मशहूर है, अक महादेवी। वो एक महारानी थी, एक्चुअली एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन महाराजा ने उसको देख लिया खिड़की में वो ऊपर, तो उसको बहुत पसंद आई, तो उसने कहा कि उसके साथ मुझे शादी करनी है। महादेवी था उसका नाम। तो लेकिन वो बचपन से शिव की अखंड भक्ति करती थी, उस शिव को अपना पति मान लिया था, तो वो उसने माना था कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरा सारा जीवन शिव के लिए अर्पित है। लेकिन राजा का जिद था कि नहीं, मुझे उससे ही शादी करना है, तो फिर उसके आगे क्या कर सकते, राजा है तो शादी कराना पड़ेगा। तो फिर शादी तो कर ली, लेकिन शादी करने से पहले उसने तीन शर्तें रखी। उसने कहा कि देखो कि मैं एक शर्त है कि आप मुझे टच नहीं करोगे। तो राजा ने मान लिया अभी तो ऐसा है, तो बाद में वो ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, उसने मान लिया। दूसरी बात उसने कहा कि मैं रोज सुबह और शाम जो भक्त है संत है उनकी सेवा करूंगी, तो हाँ ठीक है। और तीसरी बात उसने कहा कि मैंने मुझे जो करना है जैसे करना है, जब आना है जब जाना है, मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से चलेगा, तो हाँ ठीक है। ये तीनों बात के लिए उसने राजा ने कहा ठीक है। और फिर उसने कहा कि अगर तीनों का उल्लंघन किया, कभी भी आपने पूछा कि ये क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, या फिर तीनों में से कोई भी एक उल्लंघन हो गया, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। तो कुछ महीनों में तीनों शर्तों का उल्लंघन हो गया, फिर वो छोड़ करके सारे उसने क्या किया, अपने वस्त्र जो पहना था उसको भी निकाल करके, उसके बाल बहुत लंबे थे, लंबे बालों के साथ उसने अपना शरीर ढका और जाना शुरू कर दिया। महल से बाहर चली गई, जंगलों में घूमना शुरू किया, और फिर वो शिव की भक्ति करने लगी वहां। फिर ऐसी जगह पर आई, अनुभव मंडप कहते हैं उसको, जहां भक्त वहां एकत्रित होते थे, और वहां शास्त्रार्थ होता था, लेन देन करते थे, चर्चा करते थे, डिबेट करते थे। तो वहां पहुंची तो वहां जो मेन व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसे शास्त्रार्थ करते करते उनको चेक करने के लिए कितनी भक्ति है, कितना अटूट निश्चय है, कितना एक परमात्मा में विश्वास है, उसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि आपने अपना शरीर ढका क्यों, जब सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर लिया, शरीर को भी अर्पित कर लिया, तो फिर शरीर को बालों से ढका क्यों है तुमने। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई बात नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं बालों को भी हटा दूं, मैं ऐसे ही वस्त्र के बिना भी चल सकती हूं, लेकिन ये जो बालों से मैंने ढका है वो आप लोगों के लिए है, आपके नजर शर्म के मारे झुके नहीं, इसलिए मैं दूसरों के लिए मैंने ढका है, मैं अपने लिए नहीं ढका है। तो मैंने उन्होंने ऐसी भक्ति उनके अंदर था, सब कुछ त्याग, सर्वस्व त्याग करके एक परमात्मा के अव्यभिचारी भक्ति उन्होंने किया है। तो भक्ति मार्ग में इतने सारे मिसाल हैं बाबा के बच्चे, जब परमात्मा खुद आए हुए हैं, शिव बाबा हमारे पास है, स्वयं भगवान आए हुए हैं, तो हमारी याद बाबा के साथ अव्यभिचारी है, एक बाबा दूसरा न कोई, सर्वस्व बाबा को देना, सर्व बुद्धि सहित सर्वस्व बाबा को अर्पण करना, ये पॉसिबल है है ना। तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, तो इसीलिए अभी बाबा को सर्वस्व अर्पण करने की जरूरत है और अव्यभिचारी याद बाबा के साथ रखने की जरूरत है। और नेक्स्ट बात है, अर्पण तो कर ली, लेकिन नेक्स्ट बात यह है कि क्या हर कर्म में बाबा को हम लेकर के चल रहे हैं, हर कर्म में हम ये बात याद रखें कि करण करावन हार बाबा करा रहे हैं। कठपुतली की बात मैंने याद किया था, तो क्या बाबा करण करावन हार है मैं कर रही हूं, हर बात में, चाहे वो सेवा कर रहे हैं, तुम ही संग खाओ, तुम ही संग बैठो, तुम ही संग रास रचाओ, तुम ही संग सेवा करो, सब कुछ बाबा के साथ बाबा करा रहा है, लेकिन मैं कर रही हूं, कहीं भी वहां मैंपन नहीं आना चाहिए। अगर कहीं भी मैंपन आया फिर वहां बाबा जवाबदार नहीं होता, वहां फिर हम ये नहीं कहेंगे एक बल एक भरोसा, है ना। तो हर कर्म में बाबा को आगे रखे, बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, मैं केवल बाबा के अनुसार कर रही हूं, हर बात में बाबा को बीच में रखेंगे तो हम सेफ रहेंगे और बाबा की शक्ति बाबा का बल हमें हमेशा मिलता रहेगा। और नेक्स्ट बात है, जब हम हर बात में बाबा को आगे रखेंगे तो नेक्स्ट बात है हिम्मत बना रहता है, क्योंकि कहीं बार ऐसी परिस्थितियां आती है तो हमारे अंदर हिम्मत नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बलहीन हो जाते हैं, शक्ति नहीं रहती, हिम्मत नहीं रहता। तो बाबा को अपना करण करावन हार बाबा को अपना बना लेते हैं तो अपने अंदर हिम्मत बना रहता है, इसलिए बाबा कहते हैं हिम्मते वच्चे मददे बाप, है ना। हिम्मत कहां से आएगा, एक बाबा को आधार बनाने से हिम्मत आएगा, है ना। तो कई बार हम सोचते हैं कि बाबा ही सब कुछ करे, बाबा ही सब कुछ करे, हम कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार होते हैं। कोई परिस्थिति आती है तो बाबा को कहते हैं बाबा प्लीज मुझे ये समस्या का हल कर दो, समस्या को निकाल दो, समस्या नहीं चाहिए। तो बाबा समस्या को निकालेंगे, बाबा समस्या को निकालेंगे, समस्या क्यों आई, वो परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों आई है, हमारे कर्मों के कारण से ही। मेरा ही कर्म है जिस कारण से वो परिस्थिति मेरे साथ, मेरे पास आया हुआ है। अभी मेरे कर्मों के कारण से ये परिस्थिति आई है और मैं ये कहूं बाबा इस परिस्थिति का हल कर लो, बाबा इस समस्या को निकाल दो, बाबा निकालेंगे हाँ या ना, परिस्थिति का हल करेंगे बाबा, करते कि नहीं करते। तो फिर बाबा को याद करने का मतलब क्या है, फिर मदद लेने के लिए बाबा को याद करते हैं ना। तो फिर मदद करते कि नहीं करते बाबा, हिम्मत का एक कदम जब तक मैं नहीं रखती हूं तब तक हजार कदम की मदद बाबा का नहीं मिलता है। अगर एक कदम भी मैं नहीं रखूं और ये मैं कहती रहूं कि बाबा मेरी मदद करो, बाबा मेरी मदद करो, बाबा मेरी मदद करो, लेकिन एक कदम भी मैं रखने के लिए तैयार नहीं हूं, तो कैसे मदद मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। तो एक कदम हिम्मत का मुझे रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो मदद भी नहीं मिलता है। वो एक कदम हिम्मत का कौन सा है, एक कदम हिम्मत का कौन सा है, एक है याद, दूसरा है श्रीमत। श्रीमत के अनुसार हम चलते रहेंगे, श्रीमत को भी फॉलो नहीं करेंगे, श्रीमत के अनुसार भी नहीं चलेंगे तो बाबा भी मदद कर नहीं करेगा ना। तो इसलिए हिम्मत रख करके हम बाबा के श्रीमत अनुसार चलते रहेंगे और फिर मदद मिलता रहेगा, है ना। तो एक कदम हिम्मत का हमें रखना है, हजार गुना मदद बाबा का मिलता रहेगा। और सातवीं बात, लास्ट बात है, जिसके अंदर बाबा को एक बल, एक भरोसा बनाया हुआ है, उनके अंदर टचिंग पावर और कैचिंग पावर बहुत क्लियर रहेगा, उनका कनेक्शन बाबा के साथ बहुत ही क्लियर रहेगा। और बाबा जो चाहते हैं, जो टच कराते हैं, वो हमें समझ में आता है, क्योंकि बुद्धि बहुत क्लियर है। बुद्धि क्यों क्लियर है, क्योंकि बुद्धि समर्पित है। बुद्धि जब समर्पित है, हमारा टचिंग पावर और कैचिंग पावर बहुत ही शक्तिशाली रहेगा। बाबा क्या कह रहे हैं हमें समझ में आता है। बुद्धि में थोड़ा भी क्लैरिटी नहीं होगा ना, तो वो टचिंग पावर हमें कैच नहीं होता। तो इसीलिए वो हमें बहुत ही क्लियर रखने की जरूरत है। और टचिंग पावर और कैचिंग पावर बहुत शक्तिशाली बना के रखे, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या करे, बाबा के साथ जो हमारे कम्युनिकेशन है ना, बहुत ही क्लियर होना चाहिए। केवल हम योग करते समय बाबा को याद करें, ये नहीं, हर बात में, हर कदम में जब बाबा को याद करते रहेंगे, बाबा को इन्वॉल्व करेंगे हमारे जीवन में, बाबा को हमारे जीवन में लाएंगे, हर बात में, हर छोटी मोटी बात में बाबा को लाएंगे, बाबा को पूछते रहेंगे, तो बाबा का जवाब मिलेगा। तो हमारा जो कैचिंग और टचिंग पावर है बहुत ही क्लियर रहेगा। और दूसरी बात है हमारी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन माना क्या, हर बात मैं बोलती हूं बाबा को। आप में से कितने लोगों को यह आदत है बाबा को लेटर लिखना, कितने लोगों की को आदत है बाबा को लेटर लिखना, बहुत कम लोग हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं बाबा को लिखो, बाबा को लिखो। साकार बाबा के टाइम पे ये हमेशा कहते थे कि बाबा को लेटर लिखो, जो अगर कुछ भी बात नहीं है, दो लाइन में एटलीस्ट लिखो, आई एम ओके, बाबा सब कुछ ठीक चल रहा है, सेवा अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो एटलीस्ट दो लाइन भी लिखो तो पता चलेगा कि बच्चा जिंदा है। तो वो हमारा जो कम्युनिकेशन है बाबा के साथ बहुत क्लियर रखने की जरूरत है। तो इसलिए चलिए अभी हम एक एक्सरसाइज करते हैं। सभी के पास नोटबुक और पेन है? नोटबुक और पेन है तो अभी शॉर्ट लेटर बाबा को लिखेंगे आप, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बहुत शॉर्ट लेटर आप बाबा को लिखेंगे, दिल की हालत, दिल का हाल बाबा को सुनाएंगे कि बाबा मैं ठीक हूं, बाबा ये है। अगर ठीक नहीं है तो कोई भी समस्याएं हैं वो भी लिख दीजिए, कोई परेशानी है उसको भी लिखिए, कोई कंप्लेन है उसके बारे में लिखिए, क्योंकि बाबा को नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे, है कि नहीं? तो इसे जो भी दिल की बात है वो बाबा को सुनाइए, दिल को हल्का करिए। बाबा दिलाराम बाबा है, दिल को आराम देने वाला है बाबा, तो दिल को हल्का करना है आज, सब कुछ बाबा को बता करके दिल को हल्का करिए। और ये महसूस करें, बाबा ये कह रहे हैं बच्चे मैं बैठा हूं, तुम चिंता मत करो। कोई भी चिंता है, कोई भी परेशानी है, कोई भी ऐसी बात आपको बहुत खटक रहा है, दिल थोड़ा भारी है और कोई समस्या नहीं है, बाबा को कह सकते हैं बाबा थैंक्स, धन्यवाद कर सकते हैं बाबा को, बाबा ने जो भी दिया है बाबा धन्यवाद। ये आदत आप जरूर हर रोज करने, ये लेटर लिखने की आदत हर रोज करने की कोशिश कर रखें, क्योंकि अगर हर रोज नहीं कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार, फ्रीक्वेंटली, उससे क्या होगा, दिल हल्का हो जाएगा बाबा के सामने। क्योंकि कोई इंसान को बताएंगे तो वो सोल्यूशन देंगे कि नहीं देंगे, है ना? तो बाबा जरूर आपकी बात सुनते हैं, उसके लिए समाधान भी बाबा देते हैं। इसलिए जो भी बात है बाबा को दे दीजिए। शॉर्ट में लिख दीजिए, ज्यादा लंबा छोड़ा नहीं, ठीक है? बाद में आराम से रात को लिख बैठ करके आप लंबा छोड़ा लेटर लिख सकते हैं बाबा को, अभी शॉर्ट, ठीक है? अभी आप पूरा कर दीजिए उस लेटर को, समाप्त कर लीजिए, और अभी नेक्स्ट पेज, फ्रेश पेज लीजिए। अभी आपका टेस्ट है कि आपका टचिंग पावर कितना पावरफुल है। बाबा की याद में बैठ जाएं पहले, बाबा की याद में बैठ जाइए पहले, अपने आप को सूक्ष्म वतन में देखें, ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में शिव बाबा विराजमान, बाप दादा मेरे सामने हैं, जो भी मैंने लेटर में लिखा बाबा ने सुना, पढ़ा, अभी बहुत पावरफुल दृष्टि बाबा मुझे दे रहे हैं, प्यार भरी शक्तिशाली दृष्टि। जो लेटर मैंने लिखा उसके जवाब में, उसके रिस्पॉन्स में बाबा कुछ कह रहे हैं। उसको कैच करें। जैसे ही आप उसको समझ पाते हैं वैसे आप लिखना शुरू करें, जैसे बाबा आपके नाम से चिट्ठी लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। बाबा का लेटर आपके नाम, लिखते समय ये महसूस करें कि बाबा आपके हाथों को यूज करके, आपके लिए बाबा लेटर लिख रहे हैं। अगर कुछ महसूस हो रहा है तो लिखना शुरू करें। बाबा का प्यार भरा लेटर जो भी लेटर मैंने लिखा था कि बाबा उसके जवाब में बहुत प्यार से लिख रहे हैं, उसमें शक्ति भर रहे हैं। आपके समस्या का समाधान दे रहे हैं। परिस्थितियों का हल बता रहे हैं। कुछ लोगों को टचिंग हुआ है, कुछ लोगों को नहीं हुआ है। अभी हमारे पास 5 मिनट है, तो कोई एक दो लोगों का अनुभव हम सुनना चाहेंगे, क्या जवाब मिला। एक लेटर है जो आपने लिखा, उसके बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा ने सेकंड लेटर में क्या लिखा, वो एक दो लोगों का हम अनुभव सुन सकते हैं। माइक मिल सकता है? बहुत ही शॉर्ट में यहाँ माइक रखा है, आगे आकर के शॉर्ट में बाबा ने क्या अनुभव कराया, सुनने से प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि बहुत ऐसे सेशंस कराए थे लेकिन बहुत अच्छे अच्छे अनुभव रहे हैं लोगों को, कि कहीं ऐसे जवाब बाबा के मिले हैं जो कभी सोचा ही नहीं था। हाँ जी,
ओम शांति। बाबा की तरफ से लेटर मिला जो लिखा हमने बाबा को, मीठे बच्चे यह आपका कार्मिक अकाउंट है, आप मेरी श्रीमत पर चलो, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाबा 1000 कदम मदद करने के लिए वचनबद्ध है। ओम शांति।
आप संतुष्ट है उस जवाब से? भले वो जवाब बहुत सिंपल है, पता है वो ज्ञान की बात ही है, लेकिन वो जवाब जब मिलता है ना, बहुत ही लाइट महसूस होता है, बहुत ही हल्कापन महसूस होता है। हाँ जी बताइएगा।
ओम शांति। ओम शांति। मैं किसी समस्या के विषय में बाबा को लिखा था, और बाद में बाबा से मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा मेरे सर पर हाथ रखे हैं और कहे हैं कि ये तुम्हारा काम हुआ ही पड़ा है, पर तुम्हारे को माफी मांगना पड़ेगा, तो मैं माफी मांग लिया हूं।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी आइए।
ओम शांति। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, कुछ परेशानी मैंने लिखी थी बाबा को, बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हारा हिसाब किताब है, तो चुकतू तो तुम्हें ही करना होगा, बाकी अंत समय में पुरुषार्थ तो तीव्र करना ही होगा।
मैं बचपन से ही अनपढ़ बहन रही हूँ।
अच्छा, बचपन की कहानी नहीं बताइए, केवल
बाबा ने मुझे अभी टचिंग करा, बेटा बाबा बाबा लिखना शुरू कर दो, और अभी कुछ दिन में आपके सामने पेपर आ जाएगा कि आप अनपढ़ नहीं हो, आप अनपढ़ नहीं हो।
शॉर्ट में।
ओम शांति। वैसे बाबा मेरे साथ हर समय रहते हैं, मेरे अनुभव पूरे दिन ही रहते हैं, हमेशा खुशी में ही रहती हूँ। जैसे जैसे दीदी ने बताया, बाबा ने हमें कहा लेटर लिखो, फिर बाबा ने हमारे हाथ से इसमें अपने रिटर्न में आंसर देने के लिए अपने हाथ का, हमें अपना हाथ यूज करके लेटर लिखाया, तो मेरे हाथ स्वतः चलते रहे, मैंने को कुछ सोचना नहीं पड़ा, मुझे अपना लिखा गया। बाबा ने कहा मुझे मेरे हाथ यूज करते हुए, बाबा कह रहे हैं अपनी कमी कमजोरियों को संपूर्ण खत्म करना है और अभ्यास निरंतर करना है, मैं बैठा हूँ मदद करने के लिए। माय स्वीट सीमा, तुम बहुत ही स्वीट हो, मेरे पसंद हो, मीठी हो, तेरा सारा काम मैं करता हूँ, तो तू मेरे पर संपूर्ण निश्चित रूप से, तेरा काम स्वतः होता रहता जाता है, तुम सदा हल्की रहो, आप तो मेरे रूहे गुलाब हो, खुशबूदार फूल हो। थैंक्स मामा, ऐसे होता रहा। थैंक यू मामा।
लास्ट।
ओम शांति। यहाँ आने से पहले मैं किसी परेशानी से थोड़ा परेशान थी, लेकिन यहाँ आई तब से, और अब बाबा ने मुझे, मैंने लेटर में जो लिखा था उसका जवाब मुझे आया है। बच्चे, मैं तो हमेशा सच्चे बच्चों के, अपने श्रीमत जो बच्चे चलते हैं उनके साथ हमेशा हूँ, आपकी परेशानी खत्म हो गई समझो। ओम शांति।
बहुत अच्छा। तो ये जवाब पाकर के आप सभी ने बहुत हल्का महसूस किया, हल्का महसूस किया। तो ये आदत बना के रखना, चाहे हर रोज लिखे या थोड़े समय दिनों में एक बार लिखे, तो इस रीति से बाबा के साथ हमारा कनेक्शन बहुत ही गहरा होता है और बाबा के साथ का जो टचिंग पावर और कैचिंग पावर है वो बहुत ही क्लियर होना शुरू होता है। कई बार ये डाउट भी होता है कि यह बाबा का टचिंग है या नहीं है, या मेरे मन की बातें हैं या बाबा का टचिंग है, क्या है। तो जब हम अपनी परिस्थिति या अपने जो परेशानी है वो बताने के बाद एकदम साइलेंस में बैठ जाए, कोई भी मन में कोई भी विचार न चले, कि जैसे समर्पण कर लिया बाबा को, बाबा ये परिस्थिति है, बाबा को दे दिया, देने के बाद मन को एकदम शांत किया, फिर उसके बाद बाबा टचिंग देंगे। अगर बीच बीच में मेरा संकल्प अगर चलता रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ये परिस्थिति है, ये समस्या है, ये है वो है, मन चलता रहेगा तो मनमत हो जाता है। तो इसीलिए जब हम पूरी तरह समर्पण कर दी बातों का, फिर बाबा टचिंग देते हैं, तो वो बाबा का टचिंग होगा। एकदम मन जब शांत होगा, कोई भी संकल्प विकल्प कुछ नहीं, तब बाबा जो बताएंगे वो बाबा का श्रीमत होगा। ठीक है, ओम शांति।